Om Shri Sai Ram. Offering myself at Bhagwan's divine lotus feet. Esteemed elders and my dear brothers and sisters, my loving Sai Ram to all of you. Before we commence this evening's drama presentation, which is based on the noble theme, Search for God, we have an ardent devotee of Bhagwan, Sri A.S. Shankaram, from the twin state of Bihar and Jharkhand, speaking to all of us for a few minutes on the spirit of holy festival in Hindi and Telugu language. He has been in Bhagwan's fold for more than 5 decades and has been blessed with several interactions with Bhagwan. We now request Sri A.S. Shankaram to come and share with all of us his valuable thoughts. Sri A.S. Shankaram.
Bhagwan Babavari Charana Kamalamandu కోటాన కోట్లు నా నమస్కారం మీ అందరికీ సాయిరాం. మన భారతదేశం చాలా విశాలమైన దేశం. ఇక్కడ ఎన్నో మనం పర్వములు చేస్తూ ఉంటాం, వాటిని పాటిస్తూ ఉంటాం. మన భారతీయ సంస్కృతి ప్రకారంగా ఈ పర్వదినాలు పాటించేయందు ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఉంటుంది. అదేమనగా మనం అందరం కూడా ఆనందంగా ప్రేమగా ఈ జీవితం గడిపి ఆ భగవంతునిలో కలిసి మనం ఎప్పటికైనా ముక్తి పొందాలన్న ఒక సందేశం ఇస్తుంది ఈ పర్వదినాలన్నీ కూడా. ఈ హోలీ పర్వదినం ముఖ్యంగా ఈ భారతదేశంలో ఉత్తర భాగంలో ఎంతో వైభవంగా ఎంతో ఆనందంగా చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ముస్లింస్ కూడా దీంట్లో పాల్గొని ఎంతో ఆనందం పొందుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనం దక్షిణ భారత్లో ఈ పర్వదినం గురించి చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. ఈ పర్వదినం చేయడానికి ఎప్పటి నుంచి మొదలైందంటే ఇప్పుడు ఈ పర్వదినంలో ముగ్గురిని మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటాం. హిరణ్యకశిపుడు, హోళిక, భక్త ప్రహ్లాదుడు. ఈ హోళిక అన్నది ఆవిడ హిరణ్యకశిపుడు యొక్క అప్పచెల్లెలు. హిరణ్యకశిపుడు అతను ఎప్పుడూ కూడా ప్రహ్లాదుని ఎన్నో బాధలు ఎన్నో కష్టాలు పడిచి అతను ఎందుకంటే నిరంతరం అతను విష్ణునామం జపిస్తూ ఉండెను. ఆ విష్ణునామం జపించడం హిరణ్యకశిపుకి ఇష్టం కాదు. అందువలన అతనికి ఎన్నో బాధలు చిన్నప్పటి నుంచి అతని తండ్రి అయినా కూడా అతనికి ఎన్నో బాధలు పెట్టేవారు. అప్పుడు పర్వతాల నుంచి తోసేసి పెద్ద ఈ బాధలు పెడుతూ ఉండగా అతనికి హోళికాదేవికి ఒక వరదానం ఉండేది. ఆ హోళికాకి అదేమనగా ఆవిడ దగ్గర ఒక సాలువు ఉండెను. ఆ సాలువు కప్పుకొని ఆవిడ ఉన్నప్పుడు ఏ అగ్ని ప్రమాదమైనా సరే అగ్ని కూడా ఆవిడని కాల్చలేదు. అందువలన హిరణ్యకశిపుడు ఆలోచించి ఆవిడని పిలిపించి ఈ హిరణ్యకశిపుడిని ఆవిడ ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి అగ్నిదహనం చేసిస్తే ప్రహ్లాదుడు చనిపోతాడన్న భావన. అప్పుడు ఈ హోళికాన్ని పిలిపించి అతని ఒళ్ళో ఆ ప్రహ్లాదుని కూర్చోబెట్టి అగ్ని దానం చేయడానికి చేశారు. అప్పుడు ఈ ప్రహ్లాదుడు కాలలేదు, కానీ హోళికాదేవే హోళికామై కాలిపోయింది. ఆవిడ కాలిపోయి దహనం అయిపోయింది. ఈ విధంగా ప్రహ్లాదుడు బతికాడు. అంటే మంచిని మంచి మీద ఎప్పుడూ కూడా ఎవరు ఏం చేయలేరు, చెడు మీద మంచి విజయం అన్నమాట. ఈ మన భారతదేశం ఈ పుణ్యస్థలంలో భగవాన్ బాబా వారి పుణ్యస్థలం, ఇది యోగ భూమి, తపోభూమి, దైవభూమి, ఇలాంటి పవిత్రమైన స్థలంలో ఈ పర్వం మీకు చేసేందుకు స్వామి మాకు అనుగ్రహించారు. ఈ అనుగ్రహించి ఎంతో ఆనందంగా ఆయన కూడా ఎంతో ఆనందం పొందారు. ఈ పర్వదినం వల్ల మనం ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన భక్తిని పెంచుకోవడం, ఆ తర్వాత ప్రతి వ్యక్తి అందు పరస్పర ప్రేమగా మనం ప్రవర్తించడం, ఇది ముఖ్యమైన సందేశం. భగవాన్ బాబాకే చరణ కమలం మే కోటి కోటి ప్రణామ్. ఏ హోలికా పర్వ కిస్లే మనాయా జాతా హై ఇస్కే బారే మే మై చంద్ శబ్ద కహకే సమాప్త్ కరుంగా. భగవాన్ బాబా ఇస్ హోలీ కే పర్వ కో యహాం మనానే కా జో అనుగ్రహ హమే దియే హై, హమే అనుగ్రహిత్ కియే హై, ఉస్కే లియే స్వామి కో హమ్ లోగ్ కోటి కోటి ప్రణామ్ అర్పిత్ కర్తే హై. హోలీ ఏక ఐసా పర్వ హై జో ఉత్తర భారత్ మే బహుత్ ఉత్సాహ ఔర్ ఉల్లాస్ కే సాత్ మనాతే హై. వహాన్ పర్ బహుత్ సే ముస్లిం భాయి భీ ఇస్మే షామిల్ హోతే హై. యే సమాజ్ మే ఏక భాయిచారా ఔర్ పరస్పర్ ప్రేమ్ ప్రదాన్ కర్తా హై. హమ్ లోగ్ కే సమాజ్ మే అనేక కష్ట ఔర్ దుఃఖో కే బీచ్ జీనా పడతా హై, ఇసీలియే పర్వ జో మనాతే హై తో ఉస్కే పీచే భీ ఏక కహానీ హోతీ హై. ఔర్ ఇస్ పర్వ కో కబ్ సే మనాయా జా రహా హై, హజారో వర్షో సే హమ్ మనాతే ఆ రహే హై. ఔర్ యే పర్వ జో హై భక్త ప్రహ్లాద్ కా, జో బచ్పన్ సే హీ వో విష్ణు కే మహాభక్త థే ఔర్ ఉన్ పర్ ఉన్కే పితా హిరణ్యకశ్యప్ అనేక అత్యాచార్ కర్తే రహే ఔర్ అత్యాచారో కో భీ భగవాన్ కే కృపా సే వో సహతే ఆయే, ఫిర్ భీ విష్ణు నామ్ కా జప్ వో కభీ త్యాగ్ నహీ కియే. ఇసీలియే హమే భీ యే సబ్ పర్వ సే కుచ్ సీఖ్ లేనా హై ఔర్ భగవాన్ బాబా నే హమ్ లోగో కో భక్తి మార్గ సే అధ్యాత్మ మార్గ సే ఏక హమ్ లోగో కో ఏక ఐసీ శిక్షా ప్రదాన్ కే జిస్సే కి హమ్ భగవాన్ మే విలీన్ హో సక్తే హై. భగవాన్ బాబా హమే సదైవ దైవీయ ప్రేమ కా పాఠ పఢాయే, ఉసీ దైవీయ ప్రేమ కా హమ్ లోగ పాఠ పఢకర్ ఉస్ భగవాన్ కే ప్రతి హమ్ లోగ కృతజ్ఞతా హోకే హమే ఆపస్ మే పరస్పర ప్రేమ ఔర్ భాయిచారా కో అప్నాతే హుయే ఇస్ జీవన్ కో జీనా హై, జిసే సమాజ్ మే శాంతి స్థాపిత హో సకే. సాయిరామ్.
శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్, ఆన్ ది ఆస్పిషియస్ ఒకేజన్ ఆఫ్ ద హోలీ ఫెస్టివల్ ది డెవటీస్ యూత్ అండ్ బాల్వికాస్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద ట్విన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ బీహార్ అండ్ జార్ఖండ్ ఆఫర్ అట్ ద లోటస్ ఫీట్ ఎ డ్రామా ఎంటైటిల్డ్ క్యా ఆప్నే భగవాన్ కో దేఖా హై. దిస్ ప్లే is based on the journey of young Narendra to Swami Vivekananda.
मैं विचार हूं, दृष्टि हूं, संदेश हूं, चिंतन हूं और यादें हूं। उस आत्ममुक्त योद्धा सन्यासी का जो हमारी पृथ्वी पर 39 वर्ष रहे और हमें यानी संपूर्ण मानव जाति को सम्मान दिया, प्रेम दिया, साहस दिया, उत्साह दिया, स्वाभिमान करना सिखाया, अपने आप पर, अपनी संस्कृति पर, अपने वेदांत पर गर्व करना सिखाया, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना सिखाया, उस दिव्य साहसी योद्धा सन्यासी को हम सभी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। पर क्या वो आज हमारे बीच हैं? जी हां, विवेकानंद हमसे दूर नहीं गए, विवेकानंद हमसे दूर जा भी नहीं सकते। विवेकानंद बिल्कुल हमारे पास हैं, हमारे भीतर, हमारे मन में, हमारी चेतना में। विवेक जोड़ आनंद यानी विवेकानंद, भाई साहब, आपके भीतर, आपके भीतर, हम सभी के भीतर वर्तमान है हमारे विवेकानंद। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे मन में, हमारी चेतना में विवेकानंद निद्रा की अवस्था में है, या स्वप्न की अवस्था में, या अर्ध जागृत अवस्था में, या भ्रम और भोग के कारावास में कैद है। तो चलिए अपने भीतर उपस्थित अपने विवेकानंद को खोजते हैं, जागृत करते हैं, याद करते हैं। चलिए नरेंद्र से आरंभ करते हैं। नरेंद्र की परम जिज्ञासा, नरेंद्र की प्यास, नरेंद्र की व्याकुलता, नरेंद्र का संघर्ष और उसका अंतर्द्वंद। उफ, मेरा ये अंतर्द्वंद, दिन रात रात दिन,
दिन रात रात दिन,
पल पल हर पल,
पल पल हर पल,
वो प्रश्न बार बार मेरे हृदय को,
वो प्रश्न बार बार मेरे हृदय को,
मेरी बुद्धि को,
मेरी बुद्धि को,
मेरी चेतना को,
मेरी चेतना को,
मेरे अंतर मन को मत रहा है,
मेरे अंतर मन को मत रहा है।
एक समुद्र मंथन मेरे पिंड में गतिमान है,
एक समुद्र मंथन मेरे पिंड में गतिमान है।
ये पदार्थ और चैतन्य के बीच का मंथन,
ये पदार्थ और चैतन्य के बीच का मंथन,
ये विचार और भावना के बीच का मंथन,
ये विचार और भावना के बीच का मंथन,
ये सत्य और परम सत्य के बीच का मंथन,
ये सत्य और परम सत्य के बीच का मंथन,
कि वो कौन है,
कि वो कौन है
और मैं कौन हूँ,
और मैं कौन,
ये साकार और निराकार के बीच,
ये साकार और निराकार के बीच,
मैं खड़ा हूँ जहाँ,
मैं खड़ा हूँ जहाँ,
वहाँ दिन है न रात है,
वहाँ दिन है न रात है,
न आदि है न अंत है,
न आदि है न अंत है,
जीवन एक द्वंद है,
जीवन एक द्वंद है,
गहरी प्यास है,
गहरी प्यास है,
कि वो कौन है,
कि वो कौन है,
है कि नहीं,
है कि नहीं वो,
ये मेरा द्वंद,
ये मेरा द्वंद,
ये मेरा अधूरापन,
ये मेरा अधूरापन,
बार बार मत रहा है मुझे,
बार बार मत रहा है मुझे,
बेचैनी ही बेचैनी,
बेचैनी ही बेचैनी,
व्याकुलता ही व्याकुलता,
व्याकुलता ही व्याकुलता,
चक्रवात ही चक्रवात,
चक्रवात ही चक्रवात,
मेरे भीतर चारों तरफ व्याप्त,
मेरे भीतर चारों तरफ व्याप्त,
ये तीव्र वेग से उठती अशांति की लहरें,
ये तीव्र वेग से उठती अशांति की लहरें,
मेरे अवचेतन मन से,
मेरे अवचेतन मन से,
स्वयं अपने से अपरिचित होने की वेदना,
स्वयं अपने से अपरिचित होने की वेदना,
अनजान भवर में डुबोती है,
अनजान भवर में डुबोती है,
उभारती है,
उभारती है,
उभार कर फिर डुबोती है,
उभार कर फिर डुबोती है,
इसके बीच पल पल हर पल,
इसके बीच पल पल हर पल,
मैं अपनी जिज्ञासा की अग्नि में जल रहा हूँ,
मैं अपनी जिज्ञासा की अग्नि में जल रहा हूँ,
कि वो कौन है,
कि वो कौन है,
कहाँ है,
कहाँ है,
कैसा है,
कैसा है
जिसने मुझे रचा है,
जिसने मुझे रचा है।
पर है मेरी दृष्टि से अदृश्य,
पर है मेरी दृष्टि से अदृश्य,
मेरी बुद्धि से परे,
मेरी बुद्धि से परे।
ये निज का सत्य है,
ये निज का सत्य है।
तो वो क्या सत्य है,
तो वो क्या सत्य है।
क्या हमने अपनी कल्पना में उस सत्य को रचा है,
क्या हमने अपनी कल्पना में उस सत्य को रचा है।
क्या आपने भगवान को देखा है,
क्या आपने भगवान को देखा है,
क्या आपने भगवान को देखा है,
क्या आपने भगवान को देखा है।
जय
दिनों की बात है जब मैं एफए की परीक्षा दे चुका था। मेरे पिता विश्वनाथ बाबू चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए, परंतु मैं विवाह करना नहीं चाहता था। मेरा मन व्याकुल था। लगभग सभी तरह के धर्म ग्रंथों का, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद मेरी प्यास बुझी नहीं। सत्य क्या है ये जानने की जिज्ञासा दिन पर दिन प्रबल होती जा रही थी। तभी एक दिन मेरे मामू रामचंद्र दत्त जी आए।
नोरेन, ऐ नोरेन, सुनलाम मेटी रंग कालो बोले तुमी बिये करते चाहिछो ना। सुनो नोरेन, मेटी बाबा दान दक्षिणा जथेष्ट देवेन, तुमी शुधु बिये करते राजी होए जाओ।
मामा जी, लड़की सांवली है या दान दहेज, ये कारण नहीं है विवाह ना करने का। विवाह ना करने का कारण कुछ और है। चूंकि मैं सत्य की जिज्ञासा में जी रहा हूं, धर्म क्या है यह मैं अनुभव करना चाहता हूं।
नरेंद्र, जदि तुम्हार मने सत्यि धर्मलाभ जन्ने इच्छे थाके, तबे ब्रह्म समाज और दर्शन शास्त्रेर मध्य घुरे बेड़ाले किछु हबे ना। तुमि दक्षिणेश्वर जाओ, सेखाने मा कालीर मंदिरे एक पूजारी श्री श्री रामकृष्ण देव उनार साथे देखा करो।
क्या एक साधारण काली मंदिर का पुजारी मेरी जिज्ञासा को शांत कर पाएगा? किसी बात को बिना परखे उसे मान लेना मेरे स्वभाव में शामिल नहीं है। फिर मैं ठहरा ब्रह्म समाजी, भला एक मूर्ति पूजा करने वाला पुजारी मुझे भगवान के बारे में क्या बता सकता है। वो कहते हैं ना, अल्प ज्ञान से लगाया गया अनुमान हमेशा असत्य ही साबित होता है। ये घटना 1880 के नवंबर माह की है। कलकत्ता के शिमला मोहल्ले में रहने वाले सुरेश चंद्र ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त थे। अक्सर ठाकुर के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर जाया करते थे। एक दिन ठाकुर को अपने घर उपदेश करने हेतु न्योता दिया और ठाकुर आए।
रामकृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये। साई कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरण्ये। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये। शरणागतहम, शरणागतहम, शरणागतहम शरण्ये। नमः श्री गुरवे, नमः श्री गुरवे, नमः श्री गुरवे, नमः नमः। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये।
कुछ पल बीते होंगे, ठाकुर को भजन सुनने की इच्छा हुई। उपस्थित लोगों में किसी को अच्छा भजन नहीं आता था, इसलिए सुरेश जी अपने पड़ोस में रहने वाले नरेंद्र को भजन गाने के लिए बुलावा भेजे और नरेंद्र सुरेश जी के घर पर आए।
Thank you.
ठाकुर को भजन सुनते सुनते भाव समाधि लग गई। भजन समाप्त होते ही ठाकुर तेजी से नरेंद्र के पास चले गए और ना जाने हाथ पैर शरीर में क्या देखने की कोशिश करते रहे और फिर एकदम से बोले,
हैगो ताड़ाताड़ी एक दिन दक्षिणेश्वर आसो, आस पे ना।
मैंने भी जाने अनजाने में सहमति में सिर हिला दिया।
राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्य।
उनके जाते ही मेरे मन ने तुरंत ये प्रश्न किया, क्या ये वही काली मंदिर का साधारण सा पुजारी है जिसके पास जाने के लिए मेरे मामू रामचंद्र दत्त कहा करते थे? फिर हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हिस्ट्री भी कहा करते थे कि जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ को प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन करते समय भाव समाधि लग जाती है, उसी तरह की अवस्था स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, उन्हें भी भाव समाधि लग जाती। मुझे तो कुछ उन्मादी प्रतीत होते और उससे कुछ अलग। चलो एक दिन दक्षिणेश्वर होकर आते। हर एक दिन अपने पड़ोसी सुरेंद्रनाथ के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर मैं दक्षिणेश्वर के लिए निकल पड़ा।
उस दिन नरेंद्र पश्चिम के दरवाजे से कमरे के भीतर आया था। अपने शरीर पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, किसी भी बाह्य वस्तु की तरफ उसका ध्यान नहीं था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे नरेंद्र अंतःमुखी गुफा में स्थिर बैठा हो। ये सब देखकर मैं सोचने लगा, संसार आसक्त लोगों के निवास स्थल माया नगरी कलकत्ता में इतना बड़ा सतोगुणी आया कहां से?
अरे यहां आने में इतने दिन लगा दिए, मैं कब से तेरा इंतजार करता रहा, इसका तो विचार नहीं कर सकता। संसारी लोगों की राम कहानी सुनते सुनते मेरे कान जल रहे हैं। मन की बात बताने के लिए कोई ना मिलने के कारण मेरा पेट फूला जा रहा है। प्रभु आप तो वही नारायण ऋषि हैं, जीवों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए हैं।
ये देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मन ही मन सोचने लगा, मैं यहां किसके दर्शन के लिए आया था और किससे भेंट हो गई? ये तो एकदम उन्मादी प्रतीत होते हैं, वरना मैं तो पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी का बेटा हूं और ठाकुर मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं जैसे मैं जो हूं वो ना होकर कोई और हूं। इस बीच ठाकुर कमरे से बाहर चले गए और जब वापस आए उनके हाथ में मिठाई की थाली थी। वो अपने हाथ से मुझे मिठाई खिलाना चाहते थे। आप मुझे दे दीजिए, मैं खा लूंगा, आप मुझे दे दीजिए ना, मैं खा लूंगा। पर ठाकुर नहीं माने, मुझे उनके हाथ से मिठाई खानी पड़ी। ठाकुर को देखकर ऐसा लगता था जैसे ठाकुर ने भगवान के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया है, वो जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं। तभी ठाकुर ने कहा, चलो मां को प्रणाम कर लो। और मेरे मुख से अनायास ही निकल गया, क्या आपने भगवान को देखा है?
हां रे, मैंने भगवान को देखा है, अपने इन्हीं आंखों से देखा है। जैसा मैं तुमको देख रहा हूं वैसा ही मैं भगवान को देखता हूं और तुम्हें भी भगवान को दिखा सकता हूं। मैं भगवान के साथ नाचता हूं, खाता हूं, पीता हूं, गाता हूं।
मैं ठाकुर की बात सुनते ही स्तब्ध खड़ा रह गया। इतने आत्मविश्वास से किसी ने नहीं कहा था कि उसने भगवान को देखा है। इतना बोलने के बाद ठाकुर का चेहरा शिशु भाव में डूबा हुआ था। मैं ठाकुर को एक टक देखता रह गया। पहली बार जीवन में इतना सहज, इतना सरल और इतने आत्मविश्वास से किसी ने कहा था कि उसने भगवान को देखा है। इस बात पर विश्वास करूं या ना करूं कुछ तय नहीं कर पा रहा था। विचार और भावना के बीच द्वंद्व शुरू हो गया और इसी द्वंद को जीता हुआ मैं दक्षिणेश्वर से वापस कलकत्ता आ गया। इसके बाद एक माह बीत गए। कॉलेज की पढ़ाई, संगीत, व्यायाम, ब्रह्म समाज की उपासना, इन सब के बीच दक्षिणेश्वर जाने की फुर्सत ही नहीं मिली। परंतु मन में दक्षिणेश्वर और ठाकुर का चेहरा घूमता रहा और एक दिन मैं पैदल ही दक्षिणेश्वर के लिए चल दिया। इससे पहले केवल एक बार ही दक्षिणेश्वर गया था, वो भी गाड़ी में बैठकर, इसलिए अनुमान नहीं लगा पाया कि कलकत्ता से दक्षिणेश्वर की दूरी क्या होगी। कितना चल चुका था पर रास्ते खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी तरह पूछते पूछते मैं दक्षिणेश्वर पहुंचा और सीधा ठाकुर के कमरे में उपस्थित हुआ।
राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये।
थोड़ी देर तक मैं ठाकुर को देखता रहा। ठाकुर मेरी तरफ एक टक देखते रहे, फिर वो भाववेश में डूबने लगे और स्पष्ट स्वर से कुछ बुदबुदाते हुए मेरी तरफ धीरे धीरे सरकने लगे। मैं ठाकुर की तरफ एक टक देख रहा था, ठाकुर मेरी तरफ एक टक देख रहे थे। फिर अचानक ठाकुर उठे और अपना दाहिना पैर मेरे सीने पर रख दिया। क्षण भर में चमत्कार हो गया। घूमने लगी, आसमान नीचे गिरने लगा, मैं हवा में तिनके की तरह उड़ने लगा और भय से चीख पड़ा, ये आपने मुझे क्या कर दिया? अभी मेरे माता पिता हैं।
अच्छा कोई बात नहीं, एकदम से करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे होगा।
मन में पुनः हलचल मच गई। ये अद्भुत पुरुष कौन है? क्या इसने मुझ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया? पर यह बात मेरी बुद्धि को स्वीकार नहीं। मुझे अभिमान है, मेरी इच्छा शक्ति प्रबल है, मुझ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग कैसे सफल हो सकता है? परंतु अभी अभी जो हुआ उसे क्या कहेंगे? मात्र एक स्पर्श से किसी के संकल्प, स्वाभिमान, अभिमान को हवा में तिनके की तरह उड़ा देना, इसे क्या कहेंगे? फिर मन में वही हलचल, वही अशांति, वही व्याकुलता। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं कौन हूं? यह अद्भुत पुरुष कौन है?
तेरे नवरे इस तरह व्यापारी सिक्कों को जांचता तब उसे स्वीकार करता, उसी तरह तुम मुझे जांचो, परीक्षण करो। जब तुम्हारा परीक्षण समाप्त हो जाए तभी तुम मुझे स्वीकार करना।
और मैं ठाकुर की उंगली पकड़कर उनके साथ साथ चलने लगा। ठाकुर मेरी बुद्धि, अहंकार, अभिमान के कारा को तोड़ चुके थे, परंतु अब भी मेरे अवचेतन में द्वंद जीवित था। ठाकुर मां काली की पूजा करते थे और मैं मां काली यानी मूर्ति पूजा को नहीं मानता था। मैंने ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि मैं निराकार ब्रह्म की उपासना करूंगा। ये एक कारावास मैंने अपने अवचेतन मन में बना रखा था और ठाकुर को मेरे इस कारावास की जानकारी भी थी, परंतु ठाकुर इस बात पर मौन रहे। शायद उन्हें उचित समय का इंतजार था। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। सन 1884 की बात, अभी बीए का परीक्षा फल नहीं निकला था और मेरे पिता का देहांत हो गया। हरि बोल
बोल हरि
हरि बोल
बोल हरि
हरि बोल।
मेरे पिता ने धन बहुत कमाया था, परंतु इतने खर्चीले स्वभाव के थे कि अपने पीछे कुछ छोड़कर नहीं गए थे, इसके बदले कुछ कर्ज छोड़कर गए थे। परिवार में आमदनी का कोई साधन नहीं था और खर्च ज्यों का त्यों बना हुआ था। ऐसी विकट परिस्थिति में परिवार की दशा बिगड़ने लगी। जो परिवार अब तक अमीरी में पलकर बड़ा हुआ था, अब गरीबी के गर्त में गिरता जा रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहे थे। परिवार में 5-6 लोग थे, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया और नौकरी की खोज में निकल गया, पर नौकरी पाना भगवान को पाने से अधिक कठिन काम था। परिणाम हर जगह से मुझे निराश होकर वापस घर लौटना पड़ा। इस बीच 3-4 माह बीत गए, परिवार की स्थिति और दयनीय हो गई। उसी समय मुझे सूचना मिली, ठाकुर अपने पास आने वाले लोगों से मेरी नौकरी के लिए निवेदन कर रहे हैं। ठाकुर की यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैं ठाकुर के पास पहुंच गया।
राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये।
ठाकुर, आप ये क्यों कर रहे हैं? मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए हर किसी के पास इस तरह दीन वचन कहना आपको शोभा नहीं देता।
अरे नौरेन, जरूरत पड़ने पर मैं तेरे लिए हाथ में झोले लेकर घर घर भिक्षा मांगने को भी तैयार हूं रे। फिर तेरे लिए इतनी सी बात कहने में मुझे कैसी लज्जा मालूम हो सकती।
आह, अपने गुरु के हृदय में अपने लिए अगाध प्रेम को देखकर मेरा मस्तक गुरु के चरण में सदा के लिए झुक गया। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ठाकुर जैसे गुरु मिले। परंतु उन दिनों नौकरी की तलाश करते करते मैं थक गया था, निराश हो गया था। कई मास से रोज सारा दिन नंगे पैर धूप में भूखा प्यासा लगातार घूमता, दर दर भटकता, दर दर की ठोकरें खाता, अपने आप को रोज दिलासा देता और फिर निराश हो जाता। हर एक दोपहर में निराशा से चीख पड़ा, ये संसार दुर्बल और दुखी लोगों के लिए नहीं है। ये संसार कोई दैवी सृष्टि नहीं, शैतान की बनाई हुई सृष्टि। थोड़े दिन पहले जो लोग सहायता करने का अवसर पाकर अपने आप को धन्य समझते थे, आज मुझे देखकर दर किनारा करने लगे। आज सुबह माता जी भी मुझ पर चिल्लाकर बोली,
बस चुप रहे, बचपन से ही तो भगवान भगवान करता रहा है, देख भगवान ने तुम्हारी क्या दशा कर दी।
मां के कहे हुए शब्द कलेजे में तीर के समान चुभ गए। मैं मन ही मन कहने लगा, क्या ईश्वर सचमुच है? यदि है तो वो मेरी इतनी करुणापूर्ण प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? ईश्वरचंद विद्यासागर ने ठीक ही कहा था, अगर ईश्वर सचमुच दयालु होता तो उसकी सृष्टि में इतना दुख कलेश क्यों होता? इस विचार से मेरा मन संशयग्रस्त हो गया। मैं एक बार फिर संशय के कारावास में कैद हो गया। चूंकि कोई भी बात छुपा कर या चोरी छुपे करना मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं साफ साफ कहने लगा कि ईश्वर नहीं है, और ईश्वर है भी तो उसकी आराधना करने से कोई लाभ नहीं है। बस परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में लोग कहने लगे,
नरेंद्र नास्तिक हो गया है, दुष्ट लोगों के साथ बैठकर मदिरापान करने लगा है। नरेंद्र नास्तिक हो गया है, दुष्ट लोगों के साथ बैठकर मदिरापान करने लगा है। नरेंद्र नास्तिक हो गया है, दुष्ट लोगों के साथ बैठकर मदिरापान करने लगा है।
ये सुनकर मैं और कठोर हो गया और उनसे बोला,
संसार के दुखों को क्षण भर भुलाने के लिए यदि कोई मदिरा पान करने लगे या वेश्या गृह जाने लगे तो मैं इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराऊंगा। इतना ही नहीं, यदि मेरे मन को यह निश्चय हो जाए कि संसार के दुख कष्टों को भुलाने के लिए यही एक मार्ग है, तो मैं इसी मार्ग का अनुसरण करूंगा।
बस मेरी ये बात जंगल की आग की तरह कलकत्ता से दक्षिणेश्वर पहुंच गई।
हाँ ठाकुर एकदम चिल्ला उठे,
चुप रहो मूर्ख, मां जगदम्बा ने मुझे बताया कि नौरेन कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। वो अखंड राज्य से आया है, संसार के उद्धार के लिए आया है।
इस समय प्रचंड नास्तिक विचारों से मेरी बुद्धि प्रभावित हो चुकी थी, परंतु ठाकुर का विश्वास मुझ पर पहले जैसा ही बना हुआ था। ऐसा विश्वास किसी ने मेरे ऊपर नहीं जताया था, मेरे माता पिता ने भी मुझ पर इतना विश्वास नहीं किया था। ठाकुर अपने इसी विश्वास और प्रेम से मुझे सदा के लिए बांध लिए थे। किसी पर निष्काम प्रेम करना वे जानते थे और वे ही कर सकते थे, और सब लोग तो स्वार्थ के लिए सिर्फ प्रेम का बाहरी प्रदर्शन ही करते। अचानक मेरे मन में उन अनुभूतियों की याद जागृत होने लगी जब मैं ठाकुर के संपर्क में आया था। तब मुझे लगने लगा ईश्वर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ईश्वर अवश्य है, नहीं तो इस संसार में जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आ जाएं, फिर भी उनके दर्शन का मार्ग मुझे खोज निकालना होगा। क्या मार्ग मुझे मिलेगा, क्या ईश्वर मुझे मिलेंगे। इस प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों के बीच मन डवाडोल होने लगा। ग्रीष्मकाल बीत गया, वर्षा आरंभ हो गई।
भगवान के बनाए इस संसार में इतना दुख क्यों है, भगवान के बनाए इस संसार में इतना दुख क्यों है, भगवान के बनाए इस संसार में इतना दुख क्यों है।
प्रतिदिन की तरह नौकरी के लिए भटकता हुआ एक शाम मैं भूखा प्यासा थका हुआ एक चबूतरे पर आकर लेट गया। कितना समय बीत गया मुझे याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मन के पर्दे पर नाना प्रकार के विचार चित्र खींचने और मिटने लगे। ऐसा मालूम हुआ कि मानो मन पर से कोई एक एक पर्दा दूर हटाता जा रहा है। ईश्वर न्यायी है या नहीं, उसकी सृष्टि में इतनी विषमता क्यों है, आदि सभी प्रश्न अपने आप सुलझने लगे थे। ये देखकर मेरा चंचल मन स्थिर हो गया, सभी संशय दूर हो गए। संसार की स्तुति और निंदा के प्रति मैं पूर्ण रूप से उदासीन हो गया हूं। तब मुझे लगा मेरा जन्म साधारण लोगों की तरह पैसा कमाने परिवार का पोषण करने के लिए नहीं हुआ है। मुझे अपने पितामह की तरह संसार का त्याग कर संन्यास ले लेना चाहिए। इस बात का अनुमान मेरे गुरु को पहले से ही रहा होगा। तभी ठाकुर उसी दिन कलकत्ता पहुंच गए जिस दिन संसार छोड़कर हिमालय जाने की तैयारी मैं कर चुका था।
अरे नौरे, कथा बोलते हो डराए, ना बोलते हो डराए, अमर मोने सोंदे हो बुझिए तुम आराए आराए। ओरे नौरे, मुझे मालूम है तू मां जगदम्बा के काम के लिए संसार में आया है, तुझे मां के लिए काम करना है, पर जब तक मैं हूं तब तक तो तू संसार में रह।
मैं कुछ नहीं बोल सका, ना चाहते हुए भी ठाकुर के साथ दक्षिणेश्वर आ गया। दूसरे दिन गुरु से विदा लेकर घर लौटा तो जीवन की चुनौतियां मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। नौकरी ढूंढने के लिए पुनः मेरा पूर्वत भटकना शुरू हो गया। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन मन में आया, ठाकुर की बात तो ईश्वर सुनते हैं, अगर ठाकुर मेरे परिवार के अन्न जल वस्त्र के लिए प्रार्थना कर देंगे तो मेरे परिवार को उपवास और अभाव में नहीं जीना होगा। पर क्या ठाकुर इस बात के लिए राजी होंगे। होंगे, जरूर होंगे, मैं ठाकुर के सामने धरना देकर बैठ जाऊंगा। इस विचार से मन में नई ऊर्जा का संचार होने लगा।
मैं तुरंत दक्षिणेश्वर के लिए निकल पड़ा। ठाकुर, आपको मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करनी होगी, मैं उनको कष्ट में और नहीं देख सकता। आप मां जगदम्बा से बोल दें कि मेरे परिवार को भोजन वस्त्र की असुविधा जीवन भर ना हो।
अरे नरे, इस तरह मैंने मां से कभी बात नहीं की रे, तो आप कैसे करो? तू स्वयं मां से बात क्यों नहीं करता? ओह, तू तो मां को मानता नहीं नरे, इसलिए तो तुझे कष्ट हो रहा है।
मैं तो मां को जानता नहीं हूं। आप ही मेरे लिए मां से इतना कह दीजिए ना, आपको ये करना होगा, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा।
अरे नरे, ठहर जरा, बात को समझ ले। मैंने कई बार मां से कहा कि नरेन के दुख कष्ट को दूर कर दे, परंतु मां मेरे मुख से तुम्हारे बारे में कुछ सुनती ही नहीं। देख, आज मंगलवार है, तू रात को मां के मंदिर में जा, मां को प्रणाम कर और तुझे जो चाहिए वो मांग। मेरी मां वो वस्तु तुझे अवश्य दे देगी। मेरी मां चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है रे, इच्छा मात्र से संसार का निर्माण कर लेती है।
इस आश्वासन ने मेरे मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दिया। मन में विचार भी नहीं आया कि मैं ब्रह्म समाजी हूं। मैंने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, मुझे मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मुझे सिर्फ इस काल में इतना याद रहा कि मुझे मां जगदम्बा के पास जाना है। इस विचार के साथ दिन बीत गया, शाम जमीन पर उतर आई और फिर रात। मां, मुझे विवेक दे, वैराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ति दे, जिससे तेरा दर्शन निरंतर प्राप्त होता रहे। और अत्यंत आनंद के साथ ठाकुर के पास लौटा। वो मुझे देखते ही बोले,
क्यों रे, संसारिक दुख कष्ट को दूर करने के लिए मां से प्रार्थना की कि नहीं?
अरे सचमुच, मैं तो भूल गया, अब क्या करूं?
जा, पुनः जाकर प्रार्थना कर क्या।
मैं पुनः मंदिर में गया, मां का चेहरा देखते ही सब भूल गया और फिर एक बार मेरे मुख से निकल गया, मां मुझे विवेक दे, वैराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ति दे। ये क्रिया 3 बार दोहराई गई। मैं मां के पास जाता, फिर ठाकुर के पास आता, फिर ठाकुर मां के पास भेज देते, फिर मैं ठाकुर के पास लौट आता। मुझे ऐसा लग रहा था ठाकुर और मां दोनों मुझसे खेल रहे हों, अपना प्रेम स्नेह इस तरह से जता रहे हों जैसे मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और दो दिव्य शक्तियों के बीच गेंद बनकर एक दूसरे की तरफ उछाला जा रहा हूं। परंतु मैं करूं भी तो क्या करूं, चुपचाप बैठने वाला भी नहीं था। सीधा ठाकुर के चरण पकड़ लिए और बोला, आज आपको मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करनी ही होगी।
जा, तेरे परिवार को मोटे अन्न वस्त्र की कमी कभी नहीं होगी।
इसके बाद मुझे नौकरी मिल गई, परिवार की सभी कठिनाइयां दूर हो गई। ये देखकर मैं कुछ निश्चिंत हुआ, परंतु मेरे भीतर व्याकुलता की लहरें शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। चेतना मन बुद्धि शरीर के कारावास से मुक्त होकर निर्गुण साक्षात्कार के लिए व्याकुल हो गया। तभी मुझे यह विचार आया कि क्या समाधि और क्या ईश्वर दर्शन, और ये सब तो ठाकुर के हाथ का खेल है। वो चुटकी बजाकर ये सब कुछ कर सकते हैं, बस मुझे उनके पास धरना देकर बैठ जाना चाहिए। और मैंने यही किया, ठाकुर के पास पहुंच गया। ठाकुर, आपको मुझे निर्विकल्प समाधि का अनुभव कराना होगा।
ओरे नोरे, इसमें मैं क्या कर सकता हूं रे, मेरे हाथ में क्या है, मां की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा।
ठाकुर, आपकी इच्छा होगी तो मां की भी इच्छा हो जाएगी,
परे, इस प्रकार जल्दी करने से कैसे होगा? बीज को जमीन में बोते ही क्या तुरंत पेड़ उगकर उसमें फल लग जाते हैं? समय आए बिना कुछ नहीं हो सकता।
इसके बाद प्रतिदिन की तरह मैं ध्यान के लिए बैठा तो बैठा ही रह गया। दिन रात रात दिन,
दिन रात रात दिन,
पल पल हर पल,
पल पल हर पल,
मेरे हृदय में,
मेरे हृदय में,
तेरे हृदय में,
तेरे हृदय में,
ओस की बूंदों में,
ओस की बूंदों में,
चांद की रोशनी में,
चांद की रोशनी में,
गंगा की लहरों में,
गंगा की लहरों में,
जड़ में,
जड़ में,
चेतन में,
चेतन में,
नभ में,
नभ में,
गर्भ में,
गर्भ में,
वो स्वयं को अभिव्यक्त कर रहा है,
वो स्वयं को अभिव्यक्त कर रहा है,
इस ब्रह्मांड के कणकण में,
इस ब्रह्मांड के कणकण में,
जन जन में,
जन जन में,
मन मन में,
मन मन में,
वही है,
वही है,
सिर्फ वही है,
सिर्फ वही है,
ध्वनि में,
ध्वनि में,
गंध में,
गंध में,
रस में,
रस में,
स्पर्श में,
स्पर्श में,
दृश्य में,
दृश्य में,
अदृश्य में,
अदृश्य में,
हाँ
हाँ,
मैंने देखा है,
मैंने देखा है,
हाँ
हाँ,
मैंने देखा है,
मैंने देखा है,
भगवान को,
भगवान को,
अपने तन में,
अपने तन में,
तेरे तन में,
तेरे तन में,
अपने मन में,
अपने मन में,
तेरे मन में,
तेरे मन में,
पल पल में,
पल पल में,
हर पल में,
हर पल में,
मैंने भगवान को देखा है,
मैंने भगवान को देखा है,
ब्रह्मांड के कणकण में,
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 ब्रह्मांड के कणकण में।
ओरेन ओरेन, अब माँ ने तुझे सब कुछ दिखा दिया, पर तेरे दरवाजे की चाबी मेरे पास दे दी। जा, जाकर थोड़ा आराम कर ले, फिर मंदिर जाकर मां को प्रणाम कर लेना। तेरे नोरेन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए रे। मैंने सोचा था तुम एक विशाल वरगद वृक्ष बनोगे, जिसके नीचे हजारों लाखों लोग आकर शरण लेंगे, परंतु तुम तो अपनी समाधि में अपनी स्वतंत्रता देख रहे हो। क्या तुम्हारा ऐसा सोचना मानवता के हित में है?
ठाकुर की वाणी ने मेरे लिए हथौड़े की चोट का काम किया। चोट मेरे मन पर पड़ी, जो स्वार्थ का कारावास निर्मित हो रहा था वो टूटकर चकनाचूर हो गया। अब मेरे सामने चुनौतियां थी। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, परंतु हम भारतीय भय, भूख, बीमारी और अंधविश्वास के गुलामी में जी रहे थे। ये आज से 150 साल पहले की बात है, परंतु जब मैं आज के भारत को देखता हूं तो वही भय, वही भूख, वही भ्रष्टाचार, वही अंधविश्वास, वही गरीबी चारों तरफ फैली हुई है। आज मुझे अपने कहे हुए वचन फिर याद आ रहे हैं।
आई कंसिडर दैट द ग्रेट नेशनल सीन इज द निग्लेक्ट ऑफ द मासेस एंड दिस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ अ डाउनफॉल। इफ वी वॉन्ट टू रीजेनरेट इंडिया वी मस्ट वर्क फॉर देम।
मानव सेवा ही माधव सेवा है। मैं उस भगवान का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं।
मानव सेवा माधव सेवा यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। मानव सेवा माधव सेवा यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। सबसे सुंदर पूजा इसकी साई प्रेम की धारा, साई प्रेम की धारा। मानव सेवा माधव सेवा यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। संसार हमारा है, हर प्राणी हमारा है, सबसे प्रेम करना बाबा को प्यारा है, ईश्वर को प्यारा है। विश्वास भाव से सेवा करना यही है काम हमारा, यही है काम हमारा। मानव सेवा माधव सेवा यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। मानव सेवा माधव सेवा यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा।
विद्यादायक बुद्धि प्रदायक सिद्धि विनायक पाहि गजाननम सिद्धि विनायक पाहि गजाननम वंदेयुमानंदनम गजाननम वंदेयुमानंदनम गजाननम सुरमुनि सेवित सुमुख गजाननम वंदेयुमानंदनम गजाननम विद्यादायक बुद्धि प्रदायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक सिद्धि विनायक पाहि गजाननम सिद्धि विनायक पाहि गजाननम वंदेयुमानंदनम गजाननम
साक्षात परब्रह्म
भगवते वासुदेवाय नमो भगवते रामरूपाय नमो भगवते श्यामरूपाय नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते रामरूपाय नमो भगवते
Govinda, Jaya Govinda, Govinda, Jaya Govinda. నవనీత చోర గోపాయ
Yeah.
जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।